परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में वंदन करते हुए आज का कथा प्रसंग प्रारंभ हो रहा है। भगवती भागीरथी गौतमी के नाम से तो ख्यात हुई ही, साथ में उनका भागीरथी नाम पड़ा। भगीरथ नाम के राजा से जिनका प्रादुर्भाव हुआ इसलिए वो भागीरथी कहलाई। उस माता भागीरथी का प्राकट्य आज की कथा में वर्णन है। नारद जी महाराज ने निवेदन किया कि आप हमें कुछ गंगा के विषय में बतलावें, भागीरथी के विषय में बतलावें। वही कथा सूत जी भी ऋषियों से कह रहे हैं। मतलब कथा का एक अपना, कथा की परंपरा होती है, जैसे गुरु गदी की परंपरा होती है, गुरु गादी की परंपरा होती है, पिता पितामह प्रपितामह की परंपरा होती है, उसी तरह कथाओं की भी परंपरा है। ये परंपरा से चली आ रही है। कह रहे हैं कि वैवस्वत मनु जो सातवें मनु कहलाते हैं, उस वैवस्वत मनु के वंश में इक्ष्वाकु नाम के राजा हुए। इक्ष्वाकु के कुल में सगर नाम के एक अत्यंत धार्मिक पुत्र हुए, जो यज्ञ करते थे, दान करते थे और आचार विचार से निर्मल पवित्र थे, सदाचारी थे, क्योंकि आचार परमो धर्म। यदि आचार अच्छा नहीं है तो धन संपत्ति काम में नहीं आती है। उनकी दो पत्नियां थी और दोनों ही उनकी सेवा करती थी। किसी पत्नी में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं था, लेकिन संसार व्याधि के मूल में है। कहा कि संसार में आना ही रोग है। या सुंदरी सा पतिना विहीना, यस्या पति सा वनिता कुरूपा, यत्रो भयं तत्र सुतस्य हानिः, यत्र त्रयं तत्र दरिद्रता च। जो सुंदर स्त्री है उसे पता चला कि कुरूप पति मिल जाता है, आ यदि पति सुंदर है तो स्त्री कुरूप मिल जाती है। यदि दोनों अच्छे मिल गए तो वहां संतान नहीं होता है, और यदि तीनों अच्छे हैं तो वहां धन नहीं है। ये संसार की विडंबना है, कोई पूर्ण नहीं है इस संसार में। इसलिए सब भगवान के शरण में जाते हैं। उसी प्रकार से सगर भी अपने कुलगुरु वशिष्ठ के शरण में जा रहे हैं। उन्होंने पूछा, महाराज आप हमारे गुरु हैं, जब कोई आपत्ति आती है तो व्यक्ति गुरु के पास जाता है, इसलिए कुछ बताएं हमको, हमारा कल्याण कैसे होगा, कैसे संतान होगा। उन्होंने बहुत विचार किया, कहा कि आप राजन ऐसा करो, जो भी आए उससे आप प्रणाम करो, सत्संग करो और उस महर्षियों की सेवा करो। एक बार एक महर्षि आए, सगर ने उन्हें पकड़ लिया और बोला, महाराज मुझे पुत्र कैसे होगा आप बताएं, क्योंकि बिना पुत्र के हमारी गति नहीं होने वाली है। हमारे हाथ से कोई अन्न जल भी ग्रहण नहीं करता है, इसका तो निष्पुत्री है, इसकी सदगति नहीं होगी। तो मुनि ने कहा कि तुम्हारे दोनों पत्नियों से ही संतान चलेगी, एक से 60,000 पुत्र उत्पन्न होंगे और एक पत्नी के गर्भ से केवल एक पुत्र होगा। वरदान देकर जब वो चले गए, तब कुछ दिनों के बाद एक पत्नी से पुत्रों की उत्पत्ति हुई। राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया और यज्ञ के फलस्वरूप पुत्रों की प्राप्ति हुई, हजारों पुत्र हुए। पुत्रों को यज्ञ के अश्वमेध यज्ञ उन्होंने जब किया तो अश्वमेध के लिए अपने बच्चों को नियुक्त किया कि आप लोग इस घोड़े के पीछे पीछे जाओ, जहां जहां घोड़ा जाता है, कौन राजा इसको बंदी बनाता है इसको आपको पता करना है, और साथ में आप पुनः घोड़े के साथ वापस आओगे तो अश्वमेध यज्ञ पूरा होगा। अब सेना सहित सभी पुत्र चल पड़े। इसी बीच में इंद्र ने उस अश्व का हरण कर लिया जो अश्वमेध का अश्व था और रक्षकों को सौंप दिया। राजकुमारों ने ढूंढने का यत्न किया लेकिन अश्व मिला नहीं। सरोवर में खोजा, जंगलों में खोजा, स्वर्गलोक में खोजा, इधर उधर खोजा, बहुत जगह खोजने के बाद भी उन लोगों को घोड़े का पता नहीं चला। तब आकाशवाणी हुई कि तुम्हारा अश्व रसातल में बंधा हुआ है। अब महाराज 60,000 पुत्र उनको रसातल के लिए जाना हुआ, सोचे किस मार्ग से जाएं हम। उन्होंने पृथ्वी को खोदना चालू किया। पृथ्वी खोदते गए, खोदते खोदते जब अंदर गए तो खाने पीने की कोई सामग्री न बची, तो मिट्टी खा करके रहते थे, पानी पी करके जो मिलता था उससे रहते थे। वो किसी तरह से अपना जीवन यापन करते और पिता के आज्ञा का पालन करते। पिता ने कहा है कि घोड़े की रक्षा करना, इसलिए घोड़े की प्राप्ति के लिए वो यत्न कर रहे थे। आजकल पुत्र तो थोड़ी सी बात हो तो कहे कि नहीं नहीं ये हमको नहीं, आप पापा आप कर लेना। ये बात उन दिनों नहीं थी, क्योंकि पिता के लिए सबसे बड़ा जरूरी क्या है, उसका पुत्र आज्ञाकारी हो। गुरु के लिए सबसे बड़ा जरूरी क्या है, उसका पुत्र आज्ञाकारी हो। इस संसार में 6 प्रकार के सुख बतलाए गए हैं। अर्था गमो नित्यम अरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यश्च पुत्रो अर्थकरी च विद्या षड जीव लोकस्य सुखानि राजन। नित्य पैसा आता हो और शरीर निरोगी हो, भार्या प्रिय बोलने वाली हो और प्रिय भी हो। एक होती है प्रिय बोलती है लेकिन प्रिय करती नहीं, उसका कर्तव्य भी प्रिय करने वाला हो और प्रिय मधुर भाषिणी भी हो। पुत्र वश में हो और अर्थकरी च विद्या, अपने पास ऐसी विद्या हो कि कहीं भी जाए तो हमारे पास लोग आए और हमारा धनागम रुके ना। ये 6 जिसके पास है वही संसार में सुखी रहेगा। इस मामले में राजा सगर समृद्ध थे। उनके 60,000 जो पुत्र थे वह उनकी आज्ञा का पालन करते थे। जब ये 60,000 पुत्र रसातल में पहुंचे तो वहां जो अश्व के रक्षक थे वह घबरा करके भाग गए, भागो 60,000 क्षत्रिय आए, हमारा क्या करेंगे, घोड़ा हम ले आए हैं चुरा करके। और डर के मारे वहां कपिल ऋषि शयन कर रहे थे, उनके सिर के पास जाकर के बैठ गए। और घोड़े को कपिल के आश्रम में बांधा। अब ये क्षत्रिय कुमार और जवान और पिता से आदेश प्राप्त कर लिए थे और जो रसातल में पहुंचने के लिए इतना श्रम किया था, इसलिए इनका वेग बढ़ गया था कि बहुत परिश्रम के साथ हम लोग आए हैं, अब शत्रु मिलेगा तो उसको मार डालेंगे। क्योंकि यौवनम धन संपत्ति, जवानी धन संपत्ति हो और प्रभुता हो और अविवेकिता हो ये एक एक व्यक्ति को नष्ट के कगार पर पहुंचाने वाली है, और जहां चारे चार हो तो क्या पूछना है। एक तो बंदर, दूसरे पी लिया शराब, तीसरे आ गया ज्वर, और चौथे बिच्छी डंक मार दे तो क्या होगा। तो कहा अब मत पूछो क्या होगा, जदवा तदवा भविष्यति, जो होगा और राम ही जाने। ये दशा हुई, ये ऋषि को ही देख करके लोग अब शब्दों का प्रयोग किया, ये कौन नालायक है ऐसा सो रहा है, हमारे घोड़े को चुरा करके लाया है। ऋषि की निद्रा भग्न हुई, निद्रा टूटी, ऋषि ने उठ करके श्राप दे दिया कि जो कोई हमारे निद्रा का व्यवधान किया, निद्रा से जगाया, वो जल के स्वाहा हो जाए, राख हो जाए। उनके श्राप से सब के सब सगर पुत्र भस्म हो गए। अब बड़ी समस्या आई, जो राजा के पुत्र चले थे अश्व को लाने के लिए, वो भस्म हो गए। अब यह सूचना महाराज सगर तक पहुंची, इस तरह की घटना घटी है। उन्होंने सोचा अब क्या करें, अब तो बहुत बड़ा संकट आ पड़ा। तो फिर उनके जो दूसरी रानी का लड़का था, उसका नाम असमंजा था, असमंजस, लेकिन वो सद्गुणी नहीं था, वो गायों पशुओं की हत्या करता था, लोगों को हैरान करता था, और क्षत्रिय धर्म भी उसमें नहीं था, उसमें वीरता इत्यादि थी ही नहीं कि उसको वो भेजते। क्रोध से उन्होंने उसको निकाल दिया था जंगल की तरफ, कि भाई इसको दूसरे तरफ पहुंचा दो, ये यहां राज्य में रहने के जाए योग्य नहीं है, क्योंकि पुत्र पैदा न हो वो अच्छा है। और मर जाए वो भी अच्छा है, लेकिन मूर्ख नालायक हो तो वो जिंदगी भर कष्ट देता है, इसलिए ऐसे के साथ रहना बड़ा कठिन होता है। अजात मृत मूर्खाणाम परमाद्य उन्चांतिम सकृत दुख करउवाद्य अंतिम अस्तु पदे पदे। जो अंतिम होता है ना मूर्ख, वो पद पद पे कष्ट देता है, इसलिए ऐसे मूर्ख पुत्र की आकांक्षा कभी नहीं करनी चाहिए, इसलिए राजा ने उसे निकाल दिया था। फिर संजोग ऐसा था, राजकुल का पुत्र था, उसकी शादी हुई थी, उसे एक लड़का हो गया था जो छोटा था, जिसका नाम अंशुमान था। असमंजस के लड़के का नाम अंशुमान था। राजा ने अंशुमान को बुलाया, पुत्र को सगर ने, और कहा बेटा एक काम है। बोला बताइए पितामह क्या बात है, हमारा सौभाग्य होगा कम से कम आप हमसे प्रसन्नता पूर्वक बातें कर रहे हैं, पिताजी को तो देश से निकाल ही दिया। कहा तुम तो अभी छोटे हो, लेकिन हमारा जो अश्व का घोड़ा, हमारा जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है वो तुम्हें लाना होगा। कहा लेकिन मैं तो बहुत छोटा हूं क्या करूं। उन्होंने कहा कि तुम्हें कपिल मुनि की आराधना करनी होगी, और कपिल की आराधना करोगे, वृतांत बतलाया कि तुम्हारे और जो चाचा थे वो चले गए रसातल में और कपिल मुनि ने उनको दग्ध कर दिया, तो ऐसा नहीं हो कि तुम्हारे साथ भी ऐसी घटना घटे, तुम्हें जरा विवेक पूर्वक कार्य करना होगा। विवेकी वो कहे ठीक है, वो मैं आपके इस कार्य को करूंगा पूरा। तो ऐसा ही हुआ, अंशुमान ने भगवान कपिल की आराधना की, और कपिल की आराधना करके घोड़े को लाए और ला करके अपने पितामह सगर को दिया। उस से सगर के घोड़े जब आ गए, घोड़ा जब आ गया, तो उनका यज्ञ अश्वमेध संपन्न हुआ। अब आप सोचिए कि यदि उनकी दो रानियां नहीं होती, दो बेटे नहीं होते, तो एक के साथ तो 60-60 हजार लड़के नष्ट हो गए। इसलिए कहा है कि कई पुत्र होने चाहिए, एक पुत्र पुत्र नहीं होता। इष्टव्या बहवः पुत्रा, मैंने पहले कहा है कि बहुत सारे पुत्रों को रखना चाहिए, वो कम से कम समाज में कई प्रकार के कार्यों को करके पिता और पितामह का नाम रोशन करते हैं। यदि एक नहीं भी रहे तो दूसरे से काम हो सकता है। मनु की भी 10-10 संतानें एक एक कन्याओं की हुई वर्णन आता है। जो ईश्वर प्रदत्त चीजें हैं उसमें कम से कम शास्त्र इत्यादि के जहां वचन है उसका पालन होना चाहिए। आज भले लोगों को लगता है कि बहुत महंगाई है, ये है वो, ऐसा नहीं है। सभी व्यक्ति अपने अपने अंश को लेकर के आते हैं, लेकिन जो अंशुमान हुए, अंशुमान के पुत्र का नाम था दिलीप, और दिलीप के लड़के भगीरथ हुए, और भगीरथ ने अपने समस्त पितामहों का जब दुर्गति का हाल सुना तो सोचे कि भाई हमको, उनको बहुत दुख हुआ और कहा, महाराज अब आप ये बतलाएं कि इनका उद्धार कैसे होगा। जो मर जाते हैं ऋषि के साप से दग्ध हो गए, उनका उद्धार कैसे होगा, क्योंकि हमारा दायित्व है कि हमारे माता पिता का उद्धार कैसे हो। राजा ने उत्तर दिया, यह तो भगवान कपिल ही जानते हैं, तो उन्हीं के पास जाओ और जाकर के पूछो कि कैसे उनका उद्धार हो सकता है। उन्होंने भगीरथ कपिल के पास जाते हैं और जाकर के उनसे प्रार्थना करते हैं। तब कपिल मुनि ने कहा कि आप शंकर की आराधना करो, जब आप शिवजी की आराधना करोगे तो शिवजी प्रसन्न होंगे और उनके जटा में भगवती गंगा विराजमान है, जब वो उसको छोड़ेंगे तो वो आएंगी तो उनके जल से तुम्हारे पितरों की मुक्ति मिलेगी। भगीरथ ने ऐसा ही किया, शिव की आराधना की, कैलाश पर्वत पर जाकर के बहुत दिनों तक तपस्या की, और तपस्या किया उसके फलस्वरूप भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और जैसे दर्शन देते हैं तो भगीरथ कहते हैं, प्रभु आपने तो बाल चंद्रमा को धारण कर रखा है, वैसे ही मेरी बाल बुद्धि है, आप मेरी भी बात को सुन ले, क्योंकि तो यदि आप बाल चंद्रमा को धारण किया है तो हमारे जैसे बालक को तो आप जरूर ही सुनेंगे, मैं इसी विश्वास के साथ आया हूं। आप मुझ पर प्रसन्न होकर के मेरे कार्य को करें प्रभु। भगीरथ ने जब ऐसा कहा तो शिव जी ने कहा कि बेटा तुम वर मांगो, क्या चाहते हो, जो वस्तु देवताओं को भी सुलभ नहीं है वो भी मैं तेरे लिए सुलभ कर दूंगा, तुम बोलो तुम्हें क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके जटा में आपने जो है एक बंद करके स्त्री रख लिया है, उसी को मुझे दे दीजिए तो हमारा काम हो जाएगा। उन्होंने कहा क्या, तो गंगा जी, आप गंगा जी को अपने जटा से छोड़ें तो हमारा काम हो जाएगा।